नमस्कार श्रोताओं, मैं दीपक मोबाइल वाणी के लिए। कृषि मंत्र के परिचर्चा में आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र जमुई के डॉक्टर प्रमोद जी। आइए हम परिचर्चा में स्वागत करते हुए उनसे जानते हैं कि समसामयिक कृषि में उनके पास क्या जानकारी है जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। हम स्वागत करते हैं अपने डॉक्टर प्रमोद जी का मोबाइल वाणी के परिचर्चा में। और प्रमोद सर, क्या आप हमारे किसान मित्रों को बताएंगे कि गेहूं के दाने का रखरखाव के लिए क्या तकनीक अपनाया जाए कि उसे लंबे समय तक संरक्षित किया जा सके?
देखिए, गेहूं के दाने को सुरक्षित रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि किसान भाई कटाई के बाद में उसको सुखा लें 10 से 12% तक। 10 से 12% तक नमी रहेगी तो खराब होने की संभावना नहीं होगी। और उसको सुखाने के बाद में एक सुपर बैग आता है, उस सुपर बैग में एयर टाइट भर करके आप उसको कहीं भी रख दीजिए तो उसमें किसी भी तरह का कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ चूहे से बताना है कि चूहे उस सुपर बैग को काट ना पाए। लेकिन गांव में चूंकि सुपर बैग आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए किसान भाई उसको प्लास्टिक की बोरी में भर करके उसमें कोई दवा डालने की जरूरत नहीं है। 10 से 12% तक नमी में सुखा करके बढ़िया प्लास्टिक की बोरी में भर करके और फिर उसको आप गेहूं का जो भूसा होता है जो लोग पशुओं के लिए रखते हैं उसके बीच में रख लीजिए। और जब फिर बुआई का समय हो आपका नवंबर का या दिसंबर में जब आप बुआई करते हो तब आप आसानी से उसको निकाल करके उसका उपयोग कर सकते हैं।
बहुत अच्छा प्रमोद जी, क्या आप किसानों को बताएंगे कि किसान कैसे यह समझेंगे कि गेहूं 10 से 12% नमी ही मात्र उसमें बचे?
देखिए, वैसे तो उसका यंत्र आता है लेकिन किसानों के पास उस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उसके लिए गेहूं के दाने को लेकर के और आप दांत के बीच में रखिएगा तो कट से आवाज आएगी, तेज आवाज आएगी। तो आप मान लीजिएगा कि गेहूं 10% तक मात्र नमी तक पहुंच गया है। अगर आवाज कट में कमी आती है कि या दूध निकलता है या कट से होता है तो मान लीजिएगा कि अभी उसको और अधिक सुखाने की जरूरत है। ये गांव में अक्सर किसान करते भी हैं।
जी बिल्कुल। अब मेरा दूसरा सवाल होगा कि अभी किसान के जो खेत खाली हैं उनमें क्या किया जाए कि आने वाली फसल खेती के समय किसानों को अधिक लाभ मिल सके?
देखिए, अभी हमारे यहाँ टेम्परेचर तापक्रम जो है जमुई जिले में 45 डिग्री से ऊपर तक जाता है और अभी सारा का सारा खेत खाली है। और यह सबसे सही समय है जब हम अपने मिट्टी की या कहें कि खेत की गहरी जुताई करें। लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से अगर संभव हो तो कर दें। उससे होगा क्या कि जो भी इंसेक्ट पेस्ट का लार्वा, अंडा, प्यूपा जो कुछ भी होगा वो सब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से समाप्त हो जाएगा। हवा का मुक्त आवागमन होगा जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनेगी। इसके बाद में इस वर्ष ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मानसून अच्छा रहेगा और समय पर आएगा। तो इसलिए जहां पर हमको जिस खेत में धान की नर्सरी डालनी है उस खेत की भी जुताई किसान भाई हमारे कर लें। और इसके साथ ही साथ में जो लंबी अवधि के प्रभेदों का उपयोग जो निचली मिट्टी जहाँ पर हम लोग करते हैं धान की खेती उसके लिए नर्सरी गिराने का सबसे उपयुक्त समय होता है 20 मई से 5 जून। तो आप नर्सरी के लिए बेड तैयार कर लें, नर्सरी के लिए खेत तैयार कर लें और जो बीज आपको लगाना है अपने खेत में उस बीज का भी प्रबंध आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर।
क्या ये खरीफ के फसलें हैं उनके लिए उन्नत बीज और जो भी चीज़ें उनको आवश्यक होती है उसके बारे में कि किसान मित्रों को कुछ सलाह देना चाहेंगे?
देखिए, हमारा ये कहना है कि अभी जब बरसात होगी या जब डालने का जो सही समय है तो हम तो बता रहे हैं आपको 20 मई से 5 मई, लेकिन वो जब बरसात होगी उसी समय किसान भाई बीज खोजना शुरू कर दें तो वैसे समय पे उनको उन्नत बीज मिलने की संभावना कम होती है। तो अभी समय है बिहार कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा या बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर या कृषि विज्ञान केंद्र जमुई, वहाँ पर अभी आपको बीज आसानी से मिल जाएगा धान का। तो वो बीज आप चूँकि वो बीज बहुत कम मात्रा में रहता है तो उस बीज को ले करके और आप कोशिश ये कीजिए कि आधार बीज लें किसान भाई और आधार बीज को ले करके फिर बीज पैदा करें और उस बीज को रखें जा ताकि अगले साल वो अपना बीज अपने खेत में लगा सकें। सारे के सारे लोग दुकान पर निर्भर नहीं रहें। बीज पैदा करें और अगर वो जितना भी खेती करते हैं उसका 1/4 हिस्से में बीज पैदा करें और फिर उसको अगले साल खेत में यूज करें, 2-3 साल तक यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। लेकिन क्या आधार बीज की खेती और बीज की खेती से जो उपज होती है दोनों समान होती है या दोनों में कुछ अंतर भी होता है?
देखिए, बीज 3 तरह का होता है जी। एक ब्रीडर सीड होता है, एक फाउंडेशन सीड होता है, तीसरा सर्टिफाइड सीड होता है
जी।
तो किसानों को पास जो बीज उपलब्ध कराया जाता है वो चाहे किसी विश्वविद्यालय से हो या कहीं से भी, वो सर्टिफाइड सीड होता है। लेकिन अगर आप बीज पैदा करना चाहते हैं तो आपको सेकंड ग्रेड का बीज फाउंडेशन सीड लेना होगा और वो फाउंडेशन सीड आपको किसी विश्वसनीय सरकारी संस्थान से ही मिलेगा और उसको ले करके और बीज पैदा करने के लिए और अनाज पैदा करने में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। करना क्या होगा कि पहले आपको फाउंडेशन सीड खरीद करके ले आना होगा, जो पैकेज और प्रैक्टिसेज आपको बताया जाएगा उस तरह से उसकी खेती आपको करनी है। जैसे बीज का उपचार करना है, नर्सरी तैयार करनी है, 21 से 25 दिन की नर्सरी की रोपाई करनी है और उसके बाद में जो संतुलित मात्रा में खाद, जो खाद रिकमेंड किया जाता है उतनी मात्रा में वो खाद आपको अपने खेत में देना होगा। कोशिश ये करना है कि जो इसका एक आइसोलेशन डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं कि जिस जो वैरायटी का बीज धान का आप लगा रहे हैं उसके बगल में नहीं लगा हुआ हो, उसकी भी दूरी 1 से 1.5 मीटर रखनी होती है। उसके बाद में उसमें जो भी अवांछनीय पौधे आपको नजर आए, वो धान ही है लेकिन अगर आप मान लीजिए राजेंद्र मंसूरी 1 का बीज आप पैदा कर रहे हैं और वो उससे अलग नजर आ रहा है तो उसको आपको निकाल देना और यह प्रक्रिया पूरे धान के सीजन में 2 से 3 बार करनी है। रोगिंग करके जो भी अवांछनीय पौधे है उसको निकाल देना है, कोई भी रोग बीमारी नहीं लगने पाए इसका ध्यान रखना है, समय पर कटाई करना है और समुचित भंडारण कर लेना है और फिर उसकी ग्रेडिंग करनी है। ग्रेडिंग करने का मतलब ये हुआ कि जो मोटा और पतला बीज है या खराब जो धान का बीज है वो अलग हो जाए, स्वच्छ बीज आप रख लीजिए, खराब बीज आप या तो बेच दीजिए या खाने में यूज कर लीजिए और फिर उसको सुरक्षित भंडारित करके आप अगले साल उसका बीज के रूप में उपयोग कीजिए।
जो आप आधार बीज या फाउंडेशन बीज की जो आप बात कर रहे हैं, आप अगर किसानों को देंगे बीज उपज के लिए तो क्या वैसे किसानों को आप जाकर खेत खेत में जाकर मदद करते हैं क्या?
देखिए, कृषि विज्ञान का केंद्र का काम ही है तकनीकी सहयोग प्रदान करना, तो बीज पैदा करने के लिए प्रशिक्षण देना, खेत पे जा करके बताना कि आप कैसे उसकी ट्रेनिंग कीजिएगा, कैसे आप उसको लगाइएगा, कैसे धान की रोपाई कीजिएगा या अन्य कोई भी कृषि कार्य आप किस तरह से कीजिएगा, ये कार्य कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक खेत पर जा कर के भी करते हैं और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं
जी। बहुत अच्छा। अभी मौसम विभाग के द्वारा लगातार ये सूचना दी जा रही है कि दिल्ली में जोर की आंधी और तूफान की बात है, क्या उसका कोई असर बिहार के जमुई जिले पर भी आने की संभावना है?
देखिए, पूरे बिहार की बात तो हम नहीं बता सकते हैं लेकिन उस तूफान का कहीं कोई असर आपके जमुई जिले पर नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी कि आपने मोबाइल वाणी को इतना समय दिया। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में भी मोबाइल वाणी के द्वारा किसानों के लिए उचित जानकारी देते रहेंगे ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी आप जरूर हमें बताएं मोबाइल वाणी पर अपने फ़ोन में नंबर 3 दबा।